ओम शांति। आवाज ही नहीं आ रहा है, ठंडी है बहुत। ओम शांति। एकदम पीछे पीछे जो भाई बहने बैठे हैं आगे आ जाओ, साथ साथ बैठेंगे तो ठंडी कम लगेगी। बहुत पीछे क्यों, आगे आ जाए, बहुत जगह खाली है। नजदीक नजदीक बैठिए, बहुत आगे जगह है। बहुत अच्छा लगा सवेरे सवेरे, सब बाबा के बच्चे देखो दौड़ दौड़ के आए हैं। हम सभी अपने अपने सेंटर में क्लास योग करते तो रहते हैं, परंतु आप सभी ज्ञान सरोवर क्यों आए हैं? वही मुरली तो वहां भी सुन सकते हैं, यहां क्यों आए हैं? अच्छा अच्छा, मैं जानना चाहूंगा जो भाई बहने जिसको 5 साल से कम समय ज्ञान में चल रहे, 5 साल से कम है, हाथ उठाइए। थोड़े हैं जो 10 साल से कम। अच्छा, और जो 20 साल से भी ऊपर है। अच्छा, बहुत पुराने भी हैं। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल कॉलेज आप देखे हैं जहां कोई 20 साल से भी, 30 साल से पढ़ रहा है, 40 साल से पढ़ रहा है? देखे हैं कोई? सारे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का कोई कोर्स भी हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 20 साल, 30 साल, 40 साल, सारा जीवन भर पढ़ते रहो, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ऐसा क्यों, क्या कारण है? कोई कोर्स का कोई ड्यूरेशन नहीं है यहां, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। क्यों? हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? हमारी पढ़ाई का, माताएं उत्तर नहीं दे रहे हैं, हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? अच्छा, इस जीवन में कुछ लक्ष्य है इस जीवन के लिए, और भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य है। इस जीवन का लक्ष्य है बाप समान बनना। बाप समान बनना माना बाप समान कर्मातीत बनना। ये कर्म क्षेत्र है, यहां हम सभी कर्म बंधन में बंध गए हैं, तो हमें अभी कर्मातीत बनना है। इसलिए हमें शिव बाबा जैसा अशरीरी बनना पड़ेगा, ब्रह्मा बाबा जैसा फरिश्ता बनना पड़ेगा। तो इस जीवन का लक्ष्य है बाप समान कर्मातीत बनना, परंतु भविष्य में इसका फल मिलेगा। हम भविष्य में देव पद के अधिकारी होंगे, परंतु देवी देवता तो सभी बनेंगे, लेकिन कोई विश्व महाराजन भी बनेंगे। तो बाबा हमें सबसे पहले श्रेष्ठ लक्ष्य देते हैं कि आपको लक्ष्मी रानी जैसा विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनना, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन भविष्य में बनेंगे, बनेंगे भविष्य में, लेकिन उनके सारे संस्कार को अभी से जीवन में धारण करना है, इस जीवन में ही। वहां सतयुग में कोई पुरुषार्थ करके और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न नहीं बनेंगे, यहां ही बनना है। तो ये विश्वविद्यालय की पढ़ाई इतनी गुह्य है, गोपनीय है, कि ये कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ के ये सारा अचीव नहीं कर सकता है। सारा जीवन भर मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए इस पढ़ाई की अवधि कोई सीमा नहीं है। जब तक जीना है तब तक मरना है, जब तक मरना है तब तक पढ़ते रहना है। तो इसलिए देखिए, साकार बाबा के महावाक्य है, बाबा ने कहा है कर्मातीत बनने के लिए कम से कम 30-40 साल तो मेहनत करना ही पड़ेगा। इस पढ़ाई में पूरा लक्ष्य को हासिल करने के लिए 30-40 साल पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा स्वयं देखिए 33 साल कर्मातीत बाबा, 33 साल पुरुषार्थ खुद भी किए, सबको कराए, और 33 साल के बाद कर्मातीत हुए। तो यहां भले बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, अभी कोई आया है जी इच्छा लगा दे 24 घंटा एक कर दे तो अलग बात है, नहीं तो कम से कम 30-40 साल लगता है कर्मातीत बनने के लिए। साकार बाबा के महावाक्य है कि इस ज्ञान को समझने के लिए ही 10-11 साल लग सकता है। पूरा ज्ञान का पूरा अच्छी तरह से समझने के लिए कम से कम 10-11 साल लग गया। तो इसलिए यहां कर्मातीत बनना हमारा लक्ष्य है। कर्मातीत अर्थात क्या? कर्मातीत अर्थात हमारे जीवन से कोई विकर्म ना हो, कोई गलतियां ना हो और श्रेष्ठ कर्म सदा करते रहें और पुराने जो भी विकर्म किए हैं वो भस्म हो जाए। अभी तक जो भी विकर्म किए हैं इसको भी भस्म करना है और अभी से आगे से भी हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, विकर्म नहीं करना है, सदा ही श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करते रहना है, तो ही हम कर्मातीत बनेंगे। अभी अगर नियमित बाबा का ज्ञान को अध्ययन करते हैं, श्रीमत क्या है समझते हैं, श्रीमत अनुसार हर कर्म करते हैं तो कोई पाप कर्म नहीं होता है। कर्मयोगी बनकर कर्म करते हैं तो पाप कर्म नहीं होता है। श्रेष्ठ कर्म क्या है हमें समझना है। बाबा हमें कर्म की गुह्य गति सिखाते हैं। कर्म चार प्रकार के हैं। सत्ययुग त्रेतायुग में अकर्म होगा अर्थात वहां कोई पाप नहीं बनेगा ना पुण्य बनेगा। अभी संगम युग में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, उधर प्रारब्ध मिलेगा। तो इसलिए सत्ययुग त्रेतायुग में अकर्म होगा। द्वापर से ही, क्योंकि देह अभिमान आधा कल्प के बाद हम सभी देह अभिमानी बन जाते हैं, तो पाप कर्म होना शुरू हो जाता है, विकर्म शुरू हो जाता है। और जब फिर हम दुख पाते हैं तो पुण्य कर्म भी करना शुरू करते हैं। तो द्वापर युग से पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों शुरू होता है। लेकिन कलयुग आते आते पुण्य किसी का होता ही नहीं, सब पाप कर्म ही हो जाता है, सब पतित बन जाते हैं। फिर अभी बाबा आकर संगम युग में हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, सुकर्म व श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, जिससे कोई विकर्म नहीं बनता है और इसका प्रारब्ध हमें 21 जन्म तक मिलता है भविष्य में। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म के लिए चार कंडीशन बाबा ने बताया है। कोई भी कर्म करते समय चार बातें याद रखो, अगर वो है तो उसको श्रेष्ठ कर्म कहेंगे। कौन सी चार बातें? एक तो कोई भी कर्म करते समय अगर हम आत्म अभिमानी होकर कर रहे हैं, देह अभिमान जरा भी ना हो, आत्म अभिमानी होकर कर रहे हैं, बाबा की याद में रहकर कर रहे हैं, जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी हम आत्मिक दृष्टि से आत्मिक संबंध निभाते हुए कर्म कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। चार बातें कौन सी हुई? एक आत्म अभिमानी होकर कर रहे हैं, बाबा की याद में रहकर कर रहे हैं, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हुए व्यवहार में आते हुए कर्म कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, उसको ही श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है, जिसका फल हमें 21 जन्म तक मिलेगा। तो अभी हमें कोई विकर्म नहीं करना है, ये तो ठीक है, कर्मयोगी बनकर बाबा की स्मृति में रहते हैं, श्रीमत याद है तो हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। परंतु अभी तक जो पुराना विकर्म किया है जाने अनजाने, अनेक जन्म का 63 जन्म का पाप का बोझा जो सिर पर है, इसको कैसे उतारें? योग दो प्रकार के हैं। एक साधारण योग, चलते फिरते साधारण योग की साधारण स्थिति। साधारण योग में अगर याद में हम हैं तो हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा, लेकिन विकर्म दग्ध करने के लिए साधारण योग से नहीं चलेगा, इसलिए ज्वालामुखी योग चाहिए। ज्वालामुखी किसको कहते जानते हैं? वोल्केनोस। ज्वालामुखी फटता है तो एकदम लावा निकलता है, जला देता है पूरा सब कुछ। तो एक है सिंपल धीमी धीमी तेज वाली आग, जिससे चाय भी गर्म नहीं होगा, लेकिन दूसरा है धधकने वाली आग, एकदम जला के राख कर दे। तो हम बाबा की याद में चलते फिरते उठते बैठते जो रहते हैं, इससे हम विकर्म नहीं करेंगे, ये ठीक है, ये भी आवश्यक है कर्मयोगी होकर रहना, लेकिन पिछले जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं अंत तक अगर तुम्हारे विकर्म दग्ध नहीं हुआ तो धर्मराजपुरी में सजा खाकर जाना पड़ेगा, फिर पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हम सभी जो तपस्वी बच्चे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आप सभी विशेष योग तपस्या के लिए तो आए हैं ना इधर, किस लिए? हम अपने अपने स्थान में, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए भी योग तो करते हैं, लेकिन जो धधकने वाली आग, एकदम बिल्कुल संसार को पूरा सुदबुद भूल जाए, बिल्कुल बाबा में एकदम लगन में मगन हो जाए, ऐसा योग के लिए परिवेश चाहिए। और ये हायर स्टडीज है, इसलिए आप एकेडमी में आए हुए हो, यहां खास अनुभव करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, ताकि फिर हम अपने अपने स्थान में भी जाके ऐसा वातावरण बनाए और ज्वालामुखी योग करें। तो बाबा की पढ़ाई के लिए इतने लंबे समय क्यों लगता है? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध करने के लिए समय लगता है, और भी जीवन में संबंध संपर्क में आते हुए, व्यवहार में रहते हुए कोई पाप कर्म ना करें, क्योंकि 63 जन्म के जो आदत है ये सबको मिटाने के लिए समय लगता है। एक चोर के साथ आप एक दिन भी साथी बन जाओ, आपको चोरी विद्या सिखा देगा, लेकिन एक साधु के साथ सारा जीवन बिताना पड़ेगा साधु बनने के लिए। तो बाबा जो संस्कार हमारे अंदर भर रहे हैं पूरा देवी देवता जैसा बनने के लिए, ये कोई 1 साल 2 साल 4 साल का कोर्स से नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो यहां हमें एक तो नियमित पढ़ना, आजकल ऑनलाइन जब से शुरू हो गया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, प्राइवेट स्टूडेंट कभी भी टॉपर नहीं हो सकता है, जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ेगा जैसा, प्राइवेट पढ़ के कोई टॉपर नहीं हो सकता है। ये ऑनलाइन स्टडी क्या है, घर में खाना भी बना रहे हैं, बच्चे भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और कोई गेस्ट आ गए, इधर मुरली चल रही है, ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है, इसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। इसलिए भले ही जब तक लॉकडाउन पीरियड था कोई बात नहीं, उस समय बाबा ने साधन दिया ताकि हम छूटे नहीं, परंतु अभी जब लॉकडाउन पूरा हो गया, नियमित रूप से जैसे स्टूडेंट लाइफ होता है ऐसे हमें भी पढ़ना है, लगन से पढ़ना है। आज भी बाबा ने कहा है चिंता लग जानी चाहिए, लौकिक पढ़ाई में जैसी चिंता लग जाती है, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको अनुभव होगा। मैं मेरा अनुभव कह सकता हूं, हम मेडिकल के लिए इतना पढ़ना पड़ता है, इतनी लगन से पढ़ना पड़ता है, कोई समझ नहीं सकता है। इतना मेहनत यहां कोई कर ले, मैं कहूंगा वो विश्व महाराजन पद उसका फिक्स्ड है। यहां भी ऐसे पढ़ना है। लौकिक दुनिया में लोग फीस देते हैं लाखों रुपया, इसलिए उतनी लगन से पढ़ते हैं, अरे इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा, पढ़ना है मुझे। बाबा के घर में कोई फीस नहीं है, बाबा की यूनिवर्सिटी में फीस नहीं है, एडमिशन नहीं है, एंट्रेंस नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि यहां एग्जाम भी नहीं है, इसलिए ढीला हो जाते सब। दुनिया में एग्जाम होता है, वहां थ्योरी पेपर होते हैं, यहां कोई थ्योरी नहीं है, यहां सब कुछ प्रैक्टिकल है। और ये प्रैक्टिकल पेपर डेली ही भी है, खास बीमारी के टाइम पर भी, और लास्ट में देना पड़ेगा। लास्ट में जब शरीर छोड़ेंगे उस समय पेपर आएगा सबका, अंतमति सोगति, कहां तक बाबा याद है, उस समय कोई और कोई तो रिश्तेदार, कोई व्यक्ति, वस्तु, खाने पीने का चीज तो याद नहीं आता है। हमने देखा है जब शरीर छोड़ते हैं खास, उस समय कितना भी कहो अरे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, बिल्कुल एक बार भी मुंह से शब्द नहीं निकलता भगवान। जिंदगी भर भगवान को पुकारा नहीं तो कैसे निकलेगा? अंत में कहेंगे फलाने की मां थोड़ी आचार तो चटा दे, आचार खा के मरेंगे फिर। तो लास्ट में आचार याद आएगा, चटनी याद आएगा, साबूदाना की खिचड़ी याद आएगी, जो जिसको पसंद है वही याद आएगा। तो इसलिए अंतमति सोगति पता चलेगा। ऐसे भी भागवत सभी पढ़े होंगे ना, उड़ीसा के बहुत भाई बहन हैं, प्राणी रो भलमंद वाणी मरण काले तहा जानी, मरते वक्त पता चलता है, क्योंकि हमने तो देखा है कई ऐसे साधक हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए अंत समय में कहते हैं मछली लाओ मछली लाओ, साधु के भी अंत में मछली याद आ रहा है मरते समय, क्योंकि सरप्राइज किया है, दिल से छोड़ा नहीं है, लोगों को देख के सरप्राइज किया है। तो इसलिए इस पढ़ाई साधारण पढ़ाई नहीं है, इसमें विकर्म दग्ध करना, इसके लिए ज्वालामुखी योग चाहिए। साधारण चलते फिरते बाबा बाबा करने से नहीं चलेगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्वालामुखी योग किसे कहा जाता है, शक्तिशाली याद जिससे विकर्म दग्ध हो जाए। लेकिन वंडरफुल यह है कि योग को अग्नि कहा जाता है, लेकिन ये अग्नि हमें शीतल बना देता है। जितना जितना एकदम योग शक्तिशाली होगी, हम इतना ठंडे होते जाएंगे, शीतल होते जाएंगे, कर्मेंद्रियां एकदम शांत हो जाएंगे, अंग अंग शीतल हो जाएगा। दूसरे अग्नि से दूसरे अग्नि भड़कते हैं, लेकिन इसमें योग अग्नि से हमारे अंदर विकार की अग्नि शांत हो जाता है ना, नहीं, यही विचित्रता है, अग्नि भी है लेकिन शीतल शांत बना दिया। तो हम सबसे पहले ज्वालामुखी योग कब करें, विशेष अमृत वेला, जिस समय वातावरण एकदम शांत, प्रकृति शांत, घर में कोई मेहमान भी आए हो, कोई भी हो, बच्चे हो, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, शक्तिशाली बिल्कुल लगन में मगन जिसको कहते हैं, ज्वाला रूप अवस्था, बीज रूप अवस्था जिसको कहते हैं, ये सारा दिन में कर्म करते समय ये अनुभव नहीं हो सकता है। सबसे पहले एकांत समय में अमृत वेले अभ्यास करना पड़ेगा, नुमा समय शाम का समय अभ्यास करना पड़ेगा, फिर वो अनुभव जैसे होने लगेगा, दिन में बीच बीच में समय निकाल के भी कर सकते हैं। जो अमृत वेले अभ्यास नहीं किया है, दिन में नहीं हो सकता है। योग एकदम शक्तिशाली स्थिति, शक्तिशाली अनुभव हो, उसके लिए चार स्टेजेस है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लगन की स्टेज, जैसे कहीं तेज आग जलाना हो तो क्या करते हैं, पहले इकट्ठा करना पड़ता है, लकड़ी ले आएंगे, घी ले आएंगे, सब ले आएंगे, सब इकट्ठा करना पड़ता है पहले। ऐसे ही योग के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ज्वालामुखी योग के लिए पहले लगन लगनी चाहिए, लगी लगन, इग्निशन, अंदर एकदम अंदर से लगन हो। सब इकट्ठा तो कर दिया, फिर उसमें जब तक आग लगा भी दिए लेकिन घी नहीं डालते रहेंगे उसमें, तो फिर आग धीरे धीरे बुझ भी सकते हैं। इसलिए यहां भी ऐसे लगन तो लग गया, लेकिन जितना बाबा के साथ प्रेम होगा, प्यार होगा, प्रेम रूपी घृत, बाबा से प्यार रूपी घी इसमें डालना पड़ेगा, तो ही एकदम धधकने वाली आग होगी। लेकिन बीच बीच में देखना क्या होता है, कुछ समय जलने के बाद जो लकड़ियां आप इकट्ठे किए हो इधर उधर हो जाते हैं, फिर आग धीमी होने लगती है, फिर क्या करते हैं, सब लकड़ी को फिर से रीअरेंज करना पड़ता है, फिर से इकट्ठा करना पड़ता है, फिर जाके ये। यहां भी ऐसा ही है, शुरू तो कर दिया, बाबा से प्यार भी हो गया, लेकिन बीच में फिर ढीला हो सकता है, फिर एकदम उसको और पावरफुल बनाने के लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। तो पहले इग्निशन, फिर आप साथ साथ उसको आप और एनहांसमेंट करना पड़ेगा, और उसमें घी डाल के, प्रेम रूपी घी, फिर प्रतिज्ञा रूपी रीइन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, फिर लास्ट में बाप समान स्थिति का अनुभव होगा। तो बाप समान स्थिति का जब अनुभव करेंगे, उसको ही ज्वालामुखी योग कहेंगे, ज्ञान सूर्य समान अनुभव होगा, लाइट हाउस माइट हाउस स्टेज इसको भी कहते हैं, बीज रूप अवस्था भी कहते हैं, तो अनुभव होगा। तो सबसे पहले अंदर लगन होनी चाहिए। आज कोई पुरुषार्थी है, कोई तीव्र पुरुषार्थी है, क्यों ऐसा होता है? बाबा के बच्चे सब नंबरवार क्यों हो जाते हैं? ज्ञान वही है, बाबा की पढ़ाई वही है, समय भी एक है, एक्स्ट्रा किसी को नहीं पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन किसी के लिए नहीं है, फिर भी सब नंबरवार क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है बाबा मुरली में वैराग्य दिलाते हैं कि बच्चे कल के लिए कोई भरोसा नहीं है, मौत सामने खड़ा है। वैराग्य नहीं है ब्राह्मणों में, अभी तक भी वैराग्य नहीं है तो विनाश कैसे होगा? सवाल ही नहीं उठता है, विनाश होगा ही नहीं। पहले ब्राह्मणों के अंदर वैराग्य आना चाहिए, फिर दुनिया वालों के अंदर वैराग्य आएगा। जब तक यहां सभी को अंदर वैराग्य नहीं आता, हे भगवान बस हो गया अभी ले चलो प्रभु, सभी के अंदर वैराग्य आएगा तो ही विनाश होगा। जब तक वैराग्य नहीं है पुरुषार्थ तीव्र हो ही नहीं सकता है, तीव्र हो ही नहीं सकता है मैं उतरू। इसलिए पहले वैराग्य आना चाहिए, नहीं कोई भरोसा नहीं, अभी कब क्या होगा, बाबा इतने बार कहते हैं अचानक होगा। और ऐसे भी दुनिया का कुछ हो ना हो अपना जीवन का क्या भरोसा है, कल नहीं मर जाएंगे क्या भरोसा? हम तो आए दिन देखते हैं मधुबन में, आए दिन किसी न किसी का फोटो लगा हुआ है, सब जा रहे हैं एडवांस पार्टी में, कभी भी हमारा भी नंबर आ जाएगा। एक्सीडेंट हो रहा है, कितने बीमारियां हो रहा है, अचानक कैंसर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कुछ भी, कोरोना से तो कितने बाबा के बच्चे चले गए, कितने चले गए, और यंग एज में हम जानते हैं यहां रह के। तो इसलिए वैराग्य, पहले वैराग्य रूपी लगन, और इसके लिए तपस्या के लिए अंदर अंदरूनी रुचि, नहीं मुझे मेरे जन्म जन्मांतर के इतने विकर्म है बाबा, मुझे कैसे मुक्त होना है, अंदर से लगन, और साथ में निद्राजित बनना पड़ेगा। थोड़ा सा तपस्वी बनने के लिए ज्वालामुखी योग, वास्तव में योग तपस्या है। तपस्या किसे कहा जाता है? तपस्या अर्थात आप सभी यहां तपस्या करने आए हैं ना, भट्टी माने क्या, तपने के लिए, तेज अग्नि में तपने के लिए। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास, दृढ़ता संपन्न अभ्यास, एकदम डटे रहो दृढ़ता से, जब तक पूरा नहीं करूंगा छोड़ूंगा नहीं, उसको कहते दृढ़ता। दृढ़ता संपन्न अभ्यास को तपस्या कहा जाता है। तो निद्राजित बनना पड़ेगा, नींद को छोड़ना पड़ेगा, कभी उठे कभी नहीं उठे ऐसा नहीं चलेगा। जो भाई बहने कभी अमृत वाला मिस नहीं करते, हाथ उठाइए, देखा कितने थोड़े ही है, कैसे होगा, कैसे होगा बताइए। योग अग्नि की तरह होने के लिए निरंतर अभ्यास, एक दिन भी मिस ना हो। ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को सारे जीवन काल में एक दिन भी अमृतोला मिस करते हुए किसने नहीं देखा। बाबा तो सार्प 2 बजे उठ जाते थे, हमारी दादियों से सब अनुभव सुना है, सार्प 2 बजे उठ जाते थे, मम्मा 2:30 बजे उठ जाती थी, एकदम लगन में मगन सवेरे उठ के। तो हम अगर आज ठंडी है, आज बुखार है, बहाना तो अनेक है, कैसे होगा? एक दृढ़ता चाहिए इसके लिए, मुझे करना ही है, बनना ही है। नारे बाबा, अंत में अगर रह गया तो धर्मराजपुरी में डंडा खाना पड़ेगा, कल्प कल्प फिर ऐसा होगा, वही होगा। अरे बाप रे, नहीं नहीं, अब भी नहीं तो कभी नहीं। तो आज से प्रतिज्ञा करके जाना सभी भाई बहने, जिसका भी कभी कभी मिस हो रहा था पीछे मुड़ के और नहीं देखना, आज से एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा, कुछ भी हो जाए मुझे, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन मुझे अमृतवेला कभी मिस नहीं करना, क्योंकि बाबा ने कहा है विशेष वरदानी वाला में बाबा खुद भोलानाथ बाबा वरदान के लिए चक्र लगाते हैं। घर गृहस्थ में भी देखते हैं कैसे सोए हैं बाबा के बच्चे, बाबा एक एक बच्चा को देखते हैं अमृतवेले, विशेष समय वरदानी वाला है। अगर शक्तिशाली बनना है तो अमृत वेला का महत्व रखना। बाबा की तो तुम सिर्फ अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ही कर दूंगा, इससे सहज रास्ता और क्या हो सकता है। तो आज से दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए कि अमृत वेला कभी भी मिस ना हो। खाली मिस की बात नहीं है, साधारण न हो, उस समय ही ज्वाला स्वरूप अवस्था अनुभव करना है। क्योंकि हमारी पढ़ाई एक होता है सुनना, दूसरा होता है उसको समाना। आज बाबा ने क्या कहा, आज के साकार मुरली में मीठे बच्चे जो भी सुनते हो उसको विचार सागर मंथन करो तो ही सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है सुनना, हाँ सुन लिया, दूसरा स्टेप है समाना, तो इसलिए बाबा कहते विचार सागर मंथन करो। तीसरा स्टेप है स्वरूप बनना, इस पढ़ाई में स्वरूप बनना हमारा लक्ष्य है, लक्ष्मीनारायण जैसा बनना, बाप समान जैसा बनना, स्वरूप बनना। खाली सुन लेना, हम मेजोरिटी खुश रहते हैं, आज मुरली सुनी, हाँ सुन लिया, सुनने से कुछ नहीं होगा, जो करेगा जो बनेगा सो पाएगा। इस सुनना तो ये प्रिलिमिनरी क्लास है, आप सभी यूनिवर्सिटी स्टडी करने आए हैं तो हायर एजुकेशन, क्योंकि सारा जीवन पढ़ना खाली वही है, खाली सुनना खाली होता तो कब से कर्मातीत हो जाते सब। सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनकर समाना है, इसलिए बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, और विचार सागर मंथन करके बाबा का खजाना को अपना अंदर अपना बनाना, चिंतन करना सारा दिन, बाबा क्या चाहते हैं मेरे से, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे कैसे करना है, लगन। तो निद्राजित बनकर इसके लिए स्वल्पाहारी बनना पड़ेगा, जो योगी होगा स्वल्पाहारी, अगर इतना इतना खाएंगे तो कुंभकर्ण जैसा, कुंभकर्ण जैसे नींद भी आएगी, तपस्या क्या करेंगे, स्वल्पाहारी बनना पड़ेगा, जितना जरूरी है उतना खाएं, लोभ लालच बस ज्यादा खाएंगे तो फिर कहां तपस्या होगी, हो ही नहीं सकता। तो पहले लगन तो है, लगन तो लगे ज्वालामुखी के लिए, अगर लगन लग गया फिर जब तक बाबा के प्यार में खो नहीं जाते हैं तब तक ज्वालामुखी योग का अभ्यास अनुभव नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा है, बाबा से संपूर्ण प्यार ही संपूर्ण ज्ञान है, बाबा से संपूर्ण प्यार प्रेम ही संपूर्ण ज्ञान है। हमारे दादियों के अंदर क्या विशेषता है, बाबा से, बाबा में ना सब कुछ, बाबा ही संसार है, बाबा में जो प्यार है जो प्रेम है दादी के अंदर पूरा नस नस में है, जिसके कारण देखो बाबा क्या से क्या बना दिए सभी दादियों को। तो जब तक प्रेम रूपी घृत नहीं डालेंगे योग धधकने वाली नहीं हो सकती है। इसलिए प्रेम, बाबा का प्यार कैसे होगा, सवेरे सवेरे उठते ही बहुत सुंदर, बहुत प्रेम के गीत बजा, बहुत सुंदर, हमारे जो हजारों गीत है उसमें कुछ गीत जो सुनते ही मन गदगद उठता है, बाबा के प्यार में एकदम खो जाते हैं हम। तो ऐसे सुंदर प्यार की गीत सुनो, अंदर एकदम अशरीर बनना बहुत सहज अनुभव होगा। बाबा ने कहा है कि अशरीर बनने के लिए चार शब्द याद करो, याद होगा सभी को, गीत, मीत, प्रीत, रीत। गीत, बाबा के जो सुंदर सुंदर गीत है वो गीत सुनते 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 खो जाएंगे एकदम बिल्कुल। दुनिया में भी कहीं संगीत संध्या होते हैं, देखना जब उधर गीत गाते हैं या जो सुनते हैं, सारी रात बीत जाए वो एकदम उसमें आनंद में प्रेम में एकदम खो जाते हैं, भूल जाते हैं समय काल सब भूल जाता है उनको। ऐसे ही बाबा के प्यार में जब हम सुंदर सुंदर मधुर गीत है संस्मरण करेंगे, गुनगुनाएंगे या सुनेंगे तो बाबा के प्रेम में एकदम खो जाएंगे, देखना देहभान बिल्कुल मिट जाएगा, बहुत सुंदर। बाबा से जितना प्रेम होगा तो ही योग इतना प्रज्वलित होगी, नहीं तो नहीं हो सकता है। तीसरी बात, बाबा के सामने प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि बाबा ऐसा मर मिटूंगा, कुछ वजह मुझे ऐसा करना ही है, करके दिखाऊंगा, बस बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो, सर्वस्व हो। बाबा से एकदम लगन में मगन हो जाए, बिल्कुल एकदम बाबा से प्रतिज्ञा करें, जो प्रतिज्ञा करते हैं बाबा उनको वरदान दे देते हैं। जैसे माँ बाप के सामने कोई बच्चे अगर छोटे बच्चे आके कहते हैं पापा मम्मी इस बार मैं क्लास में टप्पर बन के दिखाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे, शाबाश बेटा, क्या चाहिए तुझे। ऐसे ही बाबा के सामने सवेरे सवेरे जो प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा उनको विशेष वरदान देते हैं। बाबा कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो डिसर्विस हो जाए, मैं आपकी दाढ़ी का लाज रखूंगा बाबा, मैं सब बन के दिखाऊंगा बाबा, मैं आप समान संपूर्ण पवित्र बन के दिखाऊंगा। बाबा के सामने प्रतिज्ञा करनी है। फिर देखिए बाबा से कैसा अनुभव होता है। इसके लिए संपूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता है। मन में जरा भी व्यर्थ संकल्प न चले, बिल्कुल लगन में मगन, प्रेम में डूब जाओ बिल्कुल एकदम। बाबा ही संसार है और कुछ कोई संकल्प ना आए, संसार का व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ भी याद न रहे, अपना देह भी भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, बाबा में तब एकाकार अनुभव होगा। बाबा जैसे एक सूर्य समान, बाबा जैसे चमक रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा खुद को एकदम। बाबा के ये देहवान छोड़कर इस साकारी दुनिया से ऊपर ऊपर ऊपर, आप आज तो भक्ति का लास्ट दिन है शायद, आप सभी पूरा अनुभवी हो चुके होंगे, सब अच्छी तरह से सब अनुभव किए होंगे। तो जब योग में बैठते हैं हम बिल्कुल देहभान को भूलकर एकदम इस साकारी शरीर को इधर उतार कर आत्मिक स्वरूप में ऊपर गए, सूक्ष्म बतन में लाइट शरीर में एकदम अनुभव करें, फिर वहां भी वो लाइट का काया को उतर करके एकदम मूल बतन में अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व, चारों तरफ सुनहरी लालिमा, बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत शांति है, वहां में बाबा के साथ, बाबा जैसे चमकता हुआ सितारा मैं भी ऐसे चमकता हुआ सितारा। फिर एकदम बाबा के नजदीक जाते 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 बिल्कुल एकदम बाबा के सन्मुख एकदम सामने, फिर बाबा में समा जाओ, बाबा और मैं एक हो गए, मैं शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप हूं, जैसे मेरे बाबा सूर्य समान चमक रहे हैं, मैं भी बाबा के साथ एकाकार हो गया, मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, बाबा और मैं दोनों चारों तरफ लाइट माइट शांति शक्ति प्रकाश पवित्रता प्रेम के किरणें चारों तरफ बिखर रहे हैं। एकाग्र हो जाएं, पूरा उस स्वरूप को देखते रहें, निहारते रहें, अनुभव करें मैं ऐसा हूं, यही मेरा बीज स्वरूप अवस्था है, यही मेरा लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप है, यही मेरा विश्व कल्याणकारी स्वरूप है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप हूं। कितना समय ऐसी स्थिति में एकाग्र होकर रह सकते हैं। अगर लंबे समय तक रह सकते हैं तो ही जन्म जन्मांतर के भी कर्म तक दग्ध होंगे ही, फिर अवस्था बनेगी। स्थिति और अवस्था में क्या अंतर है? स्थिति थोड़े समय के लिए अनुभव होता है, लेकिन उसको बार बार अभ्यास करते 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 लंबे समय तक उस स्थिति में जब रह सकते हैं हम, उसको कहते हैं अवस्था। जैसे रेड लाइट में सबको शांति की अनुभूति होती है, बाहर जाएं कहीं कोई आपको कुछ टोंट कर दिया, कुछ गाली दे दिया, तुरंत वो शांति कहां चली जाती है, फिर कोई कुछ बोल दिया। लेकिन बहुत लंबे समय तक जो शांति की अनुभूति करते हुए अभ्यास करते 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 फिर सेवा क्षेत्र में भी आए, कोई कुछ बोल दिए तो तुरंत उसको प्रोवोकेशन नहीं होगा शांति की स्थिति। तो लंबे समय तक अभ्यास करते करते स्थिति फिर अवस्था बन जाती है। जब हमारी अवस्था बन जाती है फिर हमको कोई हिला नहीं सकता है, अचल अडोल स्थिर हम बन सकते हैं। तो सवेरे अमृत वेले अगर बाप समान कंबाइंड स्टेज एकदम बिल्कुल अंतरिक्ष से ऊपर मूल वतन में ऊपर पूरा सूर्य समान चमक रहा हूं, वहां से बाबा के साथ साथ लाइट माइट की किरणें सारी पृथ्वी के ग्लोब पर फैला रहा हूं, ऐसा अनुभव होगा मैं विश्व कल्याणकारी हूं, बाबा के साथ साथ पवित्रता की शक्ति की किरणें बरस रही है सारी पृथ्वी पर, पांचों तत्व सहित सब कुछ एकदम बिल्कुल शांत सत्व प्रधान होते जा रहे हैं। तो उस स्वरूप में कितना समय हम एकाग्र हो पाते हैं, बिल्कुल देहभान दुनिया सब भूल जाए, बाबा और मैं बस, उसको ही ज्वाला स्वरूप स्टेज ज्वालामुखी स्टेज कहेंगे, जिससे भी कर्म दग्ध होगा। जब ऐसी स्थिति हमारी है कैसे पता चलेगा? क्योंकि बहुत बाबा के बच्चे भोले बच्चे हैं, योग किसे कहा जाता है, निद्रा किसे कहा जाता है, उनको पता नहीं चलता है। नींद में भी शांति मिलती है, जब सो जाते हैं ना तो भी शांति की अनुभूति होती है। तो होंगे नींद में, पूछेंगे कैसा लगा, बहुत शांति अनुभूति हुई योग में। होंगे निद्रा योग में, जैसे एक बार जगदीश भाई जी का क्लास चल रहा था, सुना रहे थे कि किसी ने कहा कि भाई साहब मैं जब योग में बैठता हूं ना, थोड़े समय के बाद मैं कहां हूं, किधर हूं, मुझे कुछ पता नहीं चलता है, वो मेरी कैसी स्थिति है, कैसे ऐसे होता है। तो जगदीश भाई जी ने कहा आप शायद थोड़ा परमधाम से भी ऊपर चले जाते होंगे। तो भोले बच्चे कभी कभी नींद को भी योग समझ लेते हैं। नहीं, मैं ज्वालामुखी स्टेज अनुभव किया, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चले कि मेरे की ज्वालामुखी स्टेज है। बिल्कुल अशरीरी अनुभव होगा, शरीर बिल्कुल एकदम सुदबुद्ध नहीं, बिल्कुल एकदम हल्का, लाइट लाइट लाइट, एकदम शरीर में बैठे हैं लेकिन देह जैसा है ही नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो योग है, संपूर्ण जागृत अवस्था में, चेतना अवस्था में रहकर योग करना है। इट इज कॉन्शियस कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, संपूर्ण जागृत अवस्था में रहकर। तो कोई आए गए, जैसे आप ड्राइविंग करके जा रहे हो, कोई आया गया, आपको भान रहेगा कोई आया गया, लेकिन कौन है एग्जैक्टली आपको याद नहीं रहेगा। ऐसे ही योग में बैठे हैं, कोई उठा बैठा, आपको ये सब पता तो चलेगा। आपको मच्छर काट रहा है पता नहीं चलेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर मच्छर काट रहा है पता नहीं चल रहा, माना निद्रा योग में है, राजयोग में नहीं है। सब पता चलेगा, लेकिन बाबा की लगन में मगन बिल्कुल। तो अशरीरी अनुभव होगा। हम अगर योग करने के बाद कहते हैं हाय थोड़ा मेरा कमर सीधा कर दो, थोड़ा लेट जाऊं, तो योग कर रहे थे कि माया के साथ युद्ध हो रहा था, एकदम अशरीरी अनुभव होगा। योग के बाद तो ऐसा लगे जाके मैं जाके कुछ करूं, और चलिए एक मिनट बाबा की याद में सभी एकाग्र हो जाएं, बाबा के साथ बिल्कुल कंबाइंड। ओम शांति। तो दो मिनट और, अशरीरीपन का अनुभव होगा, शक्तिशाली अनुभूति होगी, एकदम शक्ति के करंट फ्लो रहा है जैसे अंदर अनुभव होगा, खुशी का पारा एकदम पारावार नहीं रहेगा, अतिंद्रिय सुख का अनुभव होगा। उस समय की ये सब अनुभूति होगी, परंतु बाद में अगर सचमुच हमारा योग पावरफुल है तो इससे हमारे विकर्म दग्ध हो रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होने लगी, हमारी दृष्टि की चंचलता, हमारी कर्मेंद्रिय अपने बस में रहेंगे और एकाग्रता दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, अभूल हो जाएंगे, कोई भी भूल नहीं होगी, व्यवहार कुशलता आएगी जीवन में, सदा निरहंकारी निर्माण होकर रहेंगे, जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। मैं बहुत पावरफुल योग करता हूं लेकिन लाल लाइट के बाद बाहर आ गया, तुरंत गुस्सा करना शुरू कर दिया, कहां है योग फिर, कौन सा पावरफुल योग है। दिन प्रतिदिन हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे जीवन में परिवर्तन नजर आएगा। अगर हमारी सचमुच शक्तिशाली स्थिति योग में है तो हमारे हम बहुत मिष्टभाषी हो जाएंगे, मधुर बोलेंगे, कम बोलेंगे, निरहंकारी होंगे, निर्माण होंगे, अंग अंग शीतल हो जाएगा, कोई गलतियां नहीं होगी हमसे, प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई तो दे, कौन मानेगा नहीं तो हमारा योग पावरफुल है। लोगों को हम कितना घंटा बैठ के योग करते हैं कोई मतलब नहीं, कितने बार मुरली रिवाइज करते हैं किसी को कोई मतलब नहीं, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो बाबा भी देखना चाहते हैं, दुनिया वाले भी देखना चाहते हैं। तो अभी तक हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, अभी तक हमारी कर्मेंद्रियां हमें धोखा दे रहे हैं, गलतियां बार बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब योग में हम कच्चे हैं। तो अभी समय की आवश्यकता है, अभी समय प्रमाण हमारे सभी का ज्वालामुखी योग होने की आवश्यकता है, नहीं तो विकर्म रह जाएगा, बहुत सजा भी खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट भी होगा, तो फिर बाबा का नाम बदनाम करेंगे। अभी मधुबन खास आए हैं आप सभी भाई बहने, यहां से एक ही संदेश लेके जाना है, बहुत पावरफुल योग अभी समय की आवश्यकता है। बाबा कहते अंत में देखना सब बंद हो जाएगा, तपस्या करोगे आप बच्चे, इससे ही पांच तत्व पावन होंगे, इससे ही परिवर्तन होगा विश्व का। अंत में तपस्या ही चलेगा और कुछ नहीं होगा देखना। तो इसलिए जो अभ्यासी नहीं होंगे अंत में कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं। लंबे समय का अभ्यासी जो होंगे अंत में उनका योग लगे, बाकी सब्जेक्ट तो आप कंपेंसेट कर लेंगे, सारी मुरलियां पढ़ लेंगे दिन रात एक करके, देखें विनाश हो रहे हैं तो अपना तन मन धन सब स्वाभाविक कर देंगे। उस समय बाबा तो लेगा भी नहीं, लेकिन कहने का मतलब है आप कहेंगे अभी विनाश हो जाएगा इससे अच्छा चलो सफल कर दें। लेकिन बहुत लंबे समय तक योग अभ्यास नहीं किया है तो अंत में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहां से कुछ भी हो जाए अमृत वेला नुआ शाम एकदम पावरफुल, और हर घंटे में वो अनुभव, हर घंटे में बाबा जो ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं हर घंटे में एक मिनट के लिए भी एकदम पावरफुल स्थिति का अनुभव, ये अभ्यास को बढ़ाते जाए। अभी पांच मिनट सभी अनुभव करेंगे ज्वाला स्वरूप का, चलें सभी अलर्ट होके बैठे, भले ठंडी है देखना भाग जाएगा अभी, ऐसा योग अग्नि को प्रज्वलित करें कि एकदम ठंडी भाग जाए, जब शरीर नहीं तो ठंडी कहां से। सभी अलर्ट होके बैठे हैं, आंखें खोल के रखें, सामने देखें बाबा को, चलें एक अंतर मन की यात्रा में, इस आवाज की दुनिया से और कहीं। सचमुच हम सभी कितना भाग्यवान हैं, संसार में अनगिनत मनुष्य आत्माएं हैं, परंतु बाबा की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी, बाबा मुझे विश्व का मालिक बना रहे हैं, संपूर्ण वर्षा का अधिकारी बना रहे हैं। अहो मैं तो पद्मापदम भाग्यशाली हूं, अब विश्व नाटक पूरा हो रहा है, मेरे बाबा आए हैं हम सभी आत्माओं को घर ले चलने, अभी चलना है मुझे। साकारी चोला को यहां उतार कर चलें अपने अनादि स्वरूप में, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा इस आवाज की दुनिया से परे, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर। अहो साकार मनुष्य लोक से मैं बहुत ऊपर, ब्रह्मलोक में पहुंच गया हूं, चारों ओर सुनहरी लालिमा, अनंत प्रशांति, मैं एक छिलमिल सितारा। ओहो मैं बाबा को मेरे सन्मुख देख रहा हूं, मेरे बाबा एक दिव्य प्रकाश का पुंज है, मेरे बाबा सूर्य समान चमक रहे हैं, मैं बाबा के बिल्कुल नजदीक आ गया, बाबा के बिल्कुल सन्मुख हूं, सामने हूं, बाबा से शक्तिशाली किरणें उतर उतर कर मुझ में समा रही है, मैं बाबा के बिल्कुल नजदीक, ओहो मैं बाबा में समा गया, मैं शिव शक्ति हूं, बाबा के साथ कंबाइंड हूं। जैसे मेरे बाबा सूर्य समान चमक रहे हैं, मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, बाबा के साथ साथ शांति शक्ति पवित्रता की किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है। ओहो कितनी शक्ति की अनुभूति हो रही है। मैं एक लाइट और व्हाइट हाउस हूं, ज्वाला स्वरूप हूं, जैसे मेरे बाबा संपूर्ण पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, बाबा की सान्निध्य में मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम तक्त हो गए, मैं भी बाप समान संपूर्ण पावन हूं। यही मेरा अनादि स्वरूप है, संपूर्ण सत्व प्रधान स्थिति है। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी हूं, बाबा के साथ साथ शक्तिशाली पवित्रता की किरणें उतर उतर कर ये विश्व पुनः सतो प्रधान बन रहा है। पांचो तत्व पुनः सतो प्रधान बन रहे हैं। मैं बाप समान विश्व परिवर्तक हूं, अब उतर आए पुनः साकारी चोला में, त्रिकुटी तख्त में, उसी स्वरूप का अनुभव करते हुए उसी शक्ति स्वरूप में स्थित होते हुए कर्म योगी बन अब मुझे बाबा का नाम रोशन करना है। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, इस धरा पर अवतरित एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूं। पांचों तत्व और पांचों विकार के आकर्षण से संपूर्ण मुक्त मैं एक जीवन मुक्त फरिश्ता हूं। प्रभु संदेश वाहक हूं। ओम शांति, ओम शांति।